सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 18। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् शमनानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है। इसमें श्रावकाचार की विस्तार से चर्चा है। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 84 पर, 84। देखो 40 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था और उसका विशेषार्थ अर्थ और विशेषार्थ वो भी देखा। आगे पढ़ेंगे यहाँ से, मिला ना 84 पृष्ठ पर। ये विशेषार्थ के बाद सेकंड पैराग्राफ आगे कहते हैं कि निष्कपट भक्ति से जिस किसी भी प्रकार से, ये निष्कपट भक्ति क्या है? हाँ नलिन भाई, भक्ति में क्या कपट हो सकता है? नहीं वो नहीं कहना, भक्ति करने में क्या कपट हो सकता है? दूसरों को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि लोग नहीं, लोग कहेंगे ये कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, और दिखावे के लिए भी कर सकते हैं या हाँ वो भी मायाचारी है। वही के कपट या नहीं मायाचारी, कपट का ही अर्थ है मायाचारी, दिखावे के लिए या कुछ चाहता है उसमें से, भक्ति में से ये भक्ति करूँ तो मुझे इतना फल मिला, यानी वो तो लोभ भी हो गया उसमें।
लेकिन ये भी आपने कल जो बात निकली थी कि अन्य देव के सामने जाके नमोकार मंत्र बोलना,
वो भी कपट, वो तो कपट ही हो गई भाई। कि निष्कपट भक्ति से जिस किसी भी प्रकार से जिन भगवान की पूजा करने वालों के सब दुख दूर होते हैं और समस्त इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं वो इच्छित पदार्थों की प्राप्ति के लिए पूजन करेंगे तो उसको नहीं मिलेगा। निष्कपट यानी भक्त बस, यानी उनके गुणों के अनुराग वश उनकी भक्ति करता है तो उसके सहज रूप से ऐसा पुण्य बनता है कि उसके वो तो पुण्य के उदय में उसके उसके इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है। एक्चुअली समय दृष्टि पूजा करता है तो उसके अन्य बाह्य चीजों की इच्छाएं वैसे नहीं रहती, इच्छा उत्पन्न होना बात अलग है, मतलब उसकी इच्छाओं की भी इच्छा नहीं होती है। इच्छा हो भी जावे तो भी उसको ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए इस तरह से उसको नहीं रहता। इच्छा होती नहीं वो बात नहीं, क्योंकि अभी चौथे पांचवे वाले उसके तो इच्छाएं भी होगी, परंतु इच्छा के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, इच्छा के लिए भगवान की पूजा, ये तो होता ही नहीं वहां पर। और इच्छा की पूर्ति नहीं भी हुए तो उसके उसमें उसको ऐसा चिंतन नहीं रहता कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो कहते जिस किसी भी प्रकार से, ये जिस भी किसी भी प्रकार से, हमने इतने सारे भेद देखे पूजा के, उसमें ये भी देखा कि नित्य नियमित उनकी पूजा करना, दूसरी बात जिनबिंब स्थापना करना, और भी हाँ चैत्यालय उनकी बनाना, चैत्यालय बनाना या गद्दे या पद्य में भी उनके पूजन करना, कहो या गा के ही करना चाहिए ऐसे नहीं है, उनके गुणों का चिंतन करना मन में, वो भी पूजन ही है उनकी। यहाँ तक कि कहा है कि तीन टाइम सामायिक करने वालों की भी वो तो पूजन है। अभी शास्त्र पढ़ेंगे हम, स्वाध्याय करेंगे तो भगवान की वाणी को हम पूज रहे हैं, हाथ में अक्षत लेके नहीं पूज रहे, उनको पढ़ रहे, उसको आत्मसात कर रहे, वो भी एक प्रकार से पूजा ही है। तो जिस किसी भी प्रकार से जिन भगवान की पूजा करने वालों के सब दुख दूर होते हैं और समस्त इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। 41 नंबर। यथा कथंचित भजताम जिनम निर्व्याज चेतसाम नश्यन्ति सर्व दुःखानि दिश कामान् दुहन्ति च। अभिषेक, पूजा, स्तवन आदि जिस किसी भी प्रकार से जो निष्कपट चित्त से जिन भगवान को भजते हैं उनके सब दुख नष्ट हो जाते हैं और दिशाएं उनके मनोरथों को पूरा करती हैं। अर्थात जिन देव के पूजक जो जो चाहते हैं वो उन्हें सर्वत्र प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि के तो अभिप्राय में भी कोई सांसारिक वांछाएं ऐसी नहीं होती कि मुझे ये पूरी होनी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसका रस कमती होता चला जाता है। फिर भी कहते हैं सहज रूप से ऐसा पुण्य बनता है, जैसे चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, वो पुण्य के उदय में सहज हो जाते हैं। इस प्रकार जिन पूजा को कर्तव्य बतलाकर उसी की तरह सिद्ध आदि पूजा को भी करने का उपदेश करते हैं। जिनानि वयजन सिद्धान साधुन धर्मं च नन्दति तेपि लोकोत्तमा तद्वत् शरणं मंगलं चयत्। हम चत्तारी मंगल बोलते हैं ना, कौन सी चार बातें चत्तारी करते थे? चार, चार मंगल है, चार लोक में उत्तम है और चार शरण है। कौन कौन सी चार है? हाँ, अरिहंत सिद्ध चार हो गए, आचार्य उपाध्याय किसको छोड़ा? हाँ 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 बोलो।
हाँ
साधु, हाँ अरिहंत सिद्ध साधु में समा गए, आचार्य उपाध्याय साधु सब साधु में समाविष्ट हो गए, और केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म, केवली प्रणित मैंने केवली पन्नतो धम्मो ऐसा कहते हैं, धम्मो लोगोत्तमा धम्मम शरणम को वच्चामि ऐसा कहते हैं। देखो आपको तो याद होगा ना, पहली लाइन क्या है आपको पता है? हाँ बोलिए। हाँ बरोबर, धम्मो मंगलम, वहाँ केवली पन्नत्ता धम्मा मंगलम नहीं कहा, यानी एक वचन है, वैसे लोगोत्तमा में भी ऐसे लगाना। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं पहले चत्तारी लोगोत्तम,
चत्तारी लोगोत्तमा, अरंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो, धम्मो लोगोत्तमा।
लोगोत्तमो, लोगोत्तमा नहीं, लोगोत्तमा अनेक वचन है, लोगोत्तमो एक धर्म है, केवली ने भगवान ने बताया हुआ धर्म एक है, इसलिए उसको लोगोत्तमो कहना, लोगोत्तमा नहीं कहना। ऐसे पवज्जामी है, अरिहंते शरणं पवज्जामी, सिद्धे शरणं पवज्जामी, साहू शरणं पवज्जामी, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामी, वो भी एक वचन है, इसलिए उसकी विभक्ति अलग अलग होती है। ये समझ कर पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं और गलत भी पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं हम गलत कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, तब यहाँ इसका अर्थ देखेंगे।
गुरुदेव कहते थे कि व्याकरण को छोड़ो बोलो अभ्यास हो इसके लिए, तो जो कुछ बोल रहे उसके बाद बहुत गहराई से अभ्यास करो, जो भी फालतू बात बता दी ये भी बोल रहे ना, आपने जो बताया कि जहाँ सिंगुलर लगना है प्लूरल लगना है, क्यों तो एक ग्यारह तो नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तीन काल के जितने हैं, तीन काल के सिद्ध है साधु है, लेकिन तीन काल का धर्म एक ही है।
हाँ देखो 42 नंबर के उसका अर्थ देखते हैं, अभी हमने पढ़ा ऊपर, अभी उसका अर्थ जिन देव की तरह मुक्तात्माओं, जिन देव में अरिहंत को लिया, मुक्तात्मा ने सिद्धों को लिया, साधुओं और रत्नत्रय रूप धर्म को पूजने वाला अंतरंग और बहिरंग विभूति से संपन्न होकर आनंद करता है। ये अंतरंग विभूति क्या है उसकी? हाँ समय दर्शन है और अधिक अधिक आत्मस्थिरता है, आनंद का तो अनुभव है ही है वहां पर, तो कहते आनंद करता है। और बहिरंग विभूति अब ये जो उसके समय दर्शन प्रकट हुआ है, वितरागता है, अभी पूर्ण वितराग तो हुआ नहीं है, तो साथ साथ में पुण्य भी बन रहा है उसका, देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, अन्य भी स्वाध्याय आदि, तो उसके तो पुण्य का बंध विशेष, जिसको कहेंगे सातिश पुण्य का बंध, तो उसमें बहिरंग विभूति सहज रूप से प्राप्त हो। बहिरंग विभूति के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा तो मान्यता में ऐसे में कब इन शुभ परिणामों से छूटकर अंतरंग में स्थिर हो जाओ, नहीं स्थिर हो जाता तो उसके यही परिणाम सहज रूप से आते हैं, पूजा के आएंगे, स्वाध्याय के आएंगे, तीर्थ यात्रा के आएंगे, अलग अलग। अभी एक ही टाइप का विचार सबको आना चाहिए ये बात नहीं हो सकती, परंतु वो अशुभ के विचार छूटकर शुभ के विचार मेजोरिटी उसमें रहेगा, अशुभ नहीं आएगा वो बात नहीं है। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि वे भी जिन देव की तरह लोक में उत्कृष्ट है, वे यानी कौन, सिद्ध है, साधु है और धर्म है, उत्कृष्ट है, शरण है और मंगल रूप है, जिसको हम लोक में उत्कृष्ट ने लोकोत्तमा कहते हैं। विशेषण चत्तारी मंगलम आदि में अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को मंगल स्वरूप उत्कृष्ट तथा शरणभूत कहा है। साधु से यानी साधु शब्द से आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों लिए जाते हैं। शरण का मतलब है कष्ट को दूर करना, अनिष्ट से रक्षा का उपाय करना, यानी साधु शरण है अर्थात क्या है, वो हमारे रक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, उन्होंने बताया हुआ मार्ग सुनकर उसको अंगीकार करके हम अपने में स्थिर हो जावे तो वो शरणभूत है, वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है। परंतु जब वैसा नहीं रह जाता तो व्यवहार से हम इनको शरणभूत उत्कृष्ट और मंगल कहेंगे। सच्चा शरण तो स्वयं है तथा मंगल का अर्थ है पाप की हानि और पुण्य का संचय। मंगल शब्द कैसे बना मालूम है,
मंगल पुण्य, पुण्य का देना और
मंगल माने
पाप का गलना।
मम गालयति, मम यानी पाप को गलाता है वो मंगल, और मंगम लाती, मंग यानी सुख, पुण्य ने सुख, सुख को जो लाता है वो है मंगल। मंगल शब्द से दो प्रकार के अर्थ होते हैं। तो यहाँ क्या ना, पाप की हानि और पुण्य का संचय है। अच्छा। है ना, वहीं से लिया ना, बालबोध में वो जो पाठ तैयार किए हैं आगम से लेकर किए हैं। इन चारों के पूजन से, ये पूजन से ये सब कार्य होते हैं। कौन से, कष्ट दूर होते हैं, अनिष्ट से रक्षा हो जाती है, पाप की हानि होती है, इनके लिए किसी अन्य देवी देवता की शरण लेना उचित नहीं है। क्योंकि हमारे ये कार्य सफल होवे इसलिए दौड़म दौड़ी चलती है ना, ये बहुत जागृत देवस्थान है, यहाँ चलो तो आपकी सभी इच्छित की पूर्ति हो जाएगी, तो लोग दौड़ते हैं उसके पीछे। यहाँ तक कि वितराग भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनके सामने जाकर भी मन्नत मांगते हैं। क्या मंगल, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ वो लादी लगाऊंगी, जो कुछ है, एडवांस में नहीं, मेरा कार्य हो जावे तो। बाकी लौकिक में तो सारे काम एडवांस में भरने पड़ते पैसे। आप गए थे ना अमेरिका, तो हमें सेफली ले जावे तो हम पैसे देंगे टिकट के, ऐसा कहा था ना, तो कहते दो दो चार चार महीने पहले तो बुकिंग करना पड़ता है और फुल पेमेंट करके फिर बुकिंग करेंगे, ट्रेन का हो, उधर का हो, कुछ भी हो ना, एडवांस में तो पैसे देना है। वहां तो ऐसा नहीं कहते गारंटी से वो सेफ्टी से ले जाए तो हम पैसे भरेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कहते।
आजकल तो ऐसा हो गया है कि शादी के लिए हॉल बुक जो होता है छह छह महीने पहले बुक करना पड़ता है, और इत्तेफाक से वो शादी कैंसिल हो गई तो
पैसे भी नहीं मिलते। और यहाँ भगवान को क्या मन्नत मांगते है, मेरा कार्य पूरा कर दो और मैं ऐसा करूँ, जैसे भगवान लालायित होकर बैठे हैं कि कौन मेरे को सोने का छत्र चढ़ाता है, कौन क्या करता है, ये हमारे बुद्धि का दीवाला है। ना वितराग भगवान किसी को कुछ देते हैं और ना जो इन्होंने कल्पना से भगवान बनाया है वो किसी को कुछ देते हैं, जो वो अपने पुण्य और पाप कर्मों के फल को प्राप्त करता रहता है। उल्टा तो ऐसा मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, मिथ्यात्व करता रहता है ऐसा मानने से, और तीव्र पाप बंद करता है। पता नहीं ना, अभी जैन भी ऐसे ही करते हैं। और हमारे भगवान नहीं कुछ देते तो अन्य मतियों के यानी जो कुछ सरागी देवताओं के पीछे चले जाते, वंतरों की पूजा करने चले जाते और न मालूम क्या क्या करते रहते।
देवलाली जाकर कुछ काम करने के बाजू में जाने लगते
हैं। हाँ ना, देखते इसके लिए अन्य देवी देवता की शरण लेना उचित नहीं है। देखो अन्य मतियों में देवियों का जरा ज्यादा है ना, तो हमारे जैनियों ने क्या सोचा, अरे लोग बाहर दौड़ रहे हैं, हमारे पास भी देवी है तो बाहर जाने से रोकेंगे तो सही उनको, तो उन्होंने वो पद्मावती को आगे कर दिए, तभी उसके पीछे लगे। यानी ये तो मिथ्यात्व जो जीव है, उधर नहीं दौड़े तो यहाँ रहकर दूसरा मिथ्यात्व पैदा कर दिया। हाँ देखो ये क्या कहते हैं, इनके लिए किसी अन्य देवी देवता की शरण लेना उचित नहीं है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये तो आसान है समझना। इष्ट ने हमें जो प्रिय है उसका वियोग होता है, क्या क्या इष्ट है, हाँ पैसे से लेकर सब, हाँ
सब
शरीर इष्ट है, धन संपत्ति इष्ट है, हमारे बाल बच्चे इष्ट है, सभी इष्ट है। तो इष्ट का वियोग होवे तभी की बात अलग, उसके विचार से ही जीव दुखी होता रहता है रात दिन, ये मेरा चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, क्यों? तो इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, ये इष्ट और अनिष्ट पुद्गल के दो प्रकार होते होंगे ना। हाँ हमारे हमारी मान्यता कल्पना है, कल्पना से किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है। तो वहां स्व को मैं मनुष्य हूँ मान लेता है, शरीर रूप मैं मान लेता है, तब ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना शुरू हो जाती है। अपने को स्वयं में जानने वाला जीव नाम का पदार्थ हूँ, चैतन्य हूँ ऐसा मानेंगे तो उसके लिए तो जानने मात्र का कार्य है, उसमें इष्टता अनिष्टता कहाँ रहे। जैसे हमारे दर्पण है, अरीसा है, मिरर, तो उसमें कौन सी चीज झलके तो अच्छा मिरर होता है। हमें बाजार से ऐसा मिरर लाना चाहिए जिसमें केवल वो गुलाब के फूल झलके और क्या क्या झलके, उसमें कोई गंदगी वगैरह कुछ नहीं झलकनी चाहिए, ऐसे मिलते होंगे ना। तो उसके लिए झलकने के लिए ना कुछ इष्टता अनिष्टता कुछ नहीं, जो सामने चीज है उसको झलकती है। हम भी ज्ञाता दृष्टा है, हम तो जानने वाले हैं, परंतु इस मूर्ख ने कल्पना कर ली कि यह अच्छा है और ये बुरा है, अच्छा बुरा मान लिया, फिर उसमें राग द्वेष चल हो गए। यानी मिथ्या तो जहां पड़ा है वहां राग द्वेष की श्रृंखला चलती रहती है, तो ये तो बंधन के कारण है सबसे बड़े। तो कहते इष्ट का वियोग और अनिष्ठा का संयोग क्यों हो रहा है, अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। यानी वो तो संयोग में बातें बनती रहती है सहज रूप से, अतः उसे हम स्वयं ही अपने शुभ कर्मों के द्वारा दूर कर सकते। यहाँ तो प्राथमिक जीवों को बताने के लिए शुभ कर्मों का उपदेश दिया, परंतु सम्यक दृष्टि तो ये दूर करने के लिए, इष्ट का वियोग टलने के लिए मैं पूजा करूं ऐसा तो नहीं मानता। सम्यक श्रुत भी एक देवता है, श्रुत ने क्या शास्त्र आगम ग्रंथ उसको श्रुत कहते हैं, वह ये भगवान की वाणी है ना उसको देवता कहा। वह सब पूज्यों की पूजा की विधि बतलाकर, क्योंकि आगम के द्वारा हमें पता चलता है सिद्धों की भक्ति, अरिहंतों की भक्ति, प्रवचन की भक्ति वो क्या होती है, हमारा उपकार करती है। केवल पूजा की विधि नहीं बतलाती, हमें अपना स्वरूप बतलाती, मोक्ष मार्ग क्या है बतलाती। जिनेन्द्र का स्वरूप तो हमें आगम के द्वारा पता चला, सिद्धों का स्वरूप क्या है, अरिहंतों का स्वरूप क्या है, उन्होंने क्या क्या बताया है, ये सब पूरी दुनिया लोग जा वाणी के हम कहते हैं सूझे लोक का लोक, सूझे का अर्थ क्या होता है, पता चले पूरा लोक और अलोक में क्या क्या है, इस बात का हमें जिनवाणी के द्वारा पता चलता है, इसलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। अतः उसकी पूजा का उपदेश करते, इसलिए जिनवाणी भी पूजनीय है। ऊपर 43 नंबर 43, यत् प्रसादान्न जातो स्यात् पूज्य पूजा व्यतिक्रम तां पूजये जगत् पूज्यां स्यात् कारोड्डम रामगिरम। ये ऊपर पहली लाइन में पूज्य हुआ है, वो पूज्य करना प्रूव हो गया लास्ट वर्ड दीर्घ रस्व नहीं पूज्य नहीं समझे पूज ऐसा नहीं हाँ ऐसा पूजा कैसे कहते हैं पूजा नहीं कहते पूजा मुझे दिखा यहाँ से आपने ऐसा कर दिया क्या है हमें रहा नहीं जाता ऐसे उल्टा सुल्टा रसो दीर्घ का करे ना तो अंदर कहीं चुभता है हमको। आप सही है आप तो अंग्रेजी मीडियम की आपको ये इतनी सूक्ष्मता बात पता नहीं है। अभी आगे देखते हैं हम देखो इसका अर्थ देख रहे थे हम 43 का जिसके प्रसाद से कभी भी पूज्य अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की पूजा में यथोक्त विधि का लंघन नहीं होता। लंघन यानी उल्लंघन उसको यानी वो छोड़कर अन्य बातें नहीं होती है उस जगत में पूज्य और स्यात पद के प्रयोग के द्वारा। ये स्यात पद क्या होता है मालूम कभी भी सुना है नहीं सुना आपने सुना है स्याद अस्थि यानी स्याद नाम का शब्द सुना है कि नहीं पद यानी शब्द स्याद वाद 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 यानी कथन स्याद स्याद कथन पद्धति स्याद का अर्थ होता है कथनचित यानी किसी अपेक्षा कथनचित यानी थोड़ा किंचित ऐसा नहीं है। मराठी में कभी कभी कथनचित किंचित के लिए लिखते हैं या वापरते हैं थोड़ा पेन है कथनचित है कभी वो नहीं है। हाँ कथनचित यानी किसी अपेक्षा से जैसे वस्तु का स्वरूप बताती है जिनवानी तो कैसी है तो वस्तु कैसी है तो कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है। एक तो कुछ बोलो ना या तो नित्य बोलो या अनित्य बोलो क्योंकि तो द्रव्य अपेक्षा नित्य है गुणों की अपेक्षा नित्य है हर पर्याय की अपेक्षा हर समय पलटने वाली वस्तु पूरी पूरी वस्तु ही पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो वस्तु ही पलटती है और ध्रुव की अपेक्षा देखेंगे तो वस्तु कायम अनादि से अनंत काल तक नित्य है। तो वस्तु किसी अपेक्षा नित्य और किसी अपेक्षा अनित्य है। ये जो स्यात स्यात नित्य स्यात अनित्य कहेंगे स्यात यानी किसी अपेक्षा वो कौन सी अपेक्षा है वो हम लगाएंगे उसके पीछे हर बार वो पूरी अपेक्षा नहीं बताई जाती क्योंकि आचार्य जो है वो कथन करके चले जाएंगे आगे सभी बेसिक बातें हर बार वहां नहीं लिखेंगे वो क्योंकि वो पता है उनको कि हम तो जैनियों को उपदेश दे रहे हैं। तो स्यात नित्य स्यात अनित्य स्यात अवक्त्य वो सब कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है वो स्याद वाद स्याद पद के प्रयोग के द्वारा यानी कथनचित की अपेक्षा बताकर एकांतवादियों से न जीती जा सकने वाली। एकांतवादी क्या है वो सर्वथा मानते हैं उसको एकांतवादी कहते हैं। हमने अभी क्या कहा कि वस्तु किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा अनित्य है यही रियलिटी है परंतु एकांतवादी अन्य धर्मी अन्य दर्शन क्या कहते हैं कोई दर्शन ऐसा है कि वस्तु नित्य ही है उसमें पर्याय होती नहीं ऐसा मानने वाले भी है कुछ दर्शन। कोई दर्शन ऐसा है वस्तु को सर्वथा पूरी वस्तु ही सर्वथा अनित्य है हर क्षण में वस्तु ही उत्पन्न होती है वहां पर्याय की अपेक्षा ऐसा कुछ नहीं कहते वो बस वस्तु अनित्य है क्षणभंगुर है सर्वथा क्षणभंगुर है ऐसा कहने वाला भी दर्शन है। तो ये कैसे तो एकांतवादी यानी एकांत मत से दूषित है वो ये मिथ्या मत वाले है सारे तो उनके द्वारा इनका कथन किसका सम्यक श्रुत यानी भगवान की वाणी वो जीती नहीं जा सकती। एक बार जो एकांतवादी अलग अलग है अब मैं पूछूं कोई कहता है कि वस्तु सर्वथा नित्य है कोई दूसरा मत कहता है वस्तु सर्वथा अनित्य है तो ये दोनों को मिलाकर जैन धर्म ने बताया ना वस्तु कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है हाँ कहते हैं, गुनाह कह रहे, यानी एक ये झूठ है, एक दूसरा झूठ है, दो झूठ मिलकर जन हुआ, ऐसा है क्या? वो दोनों ही सर्वथा वाले हैं, ख्याल में? ऐसा नहीं है जैन, ऐसा भी है वैसा, ये तो अनेकांत को जो नहीं समझते ना, ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ भी कह देते, वैसे ऐसी भी है वैसी भी, ऐसा नहीं है। किसी अपेक्षा जो कुछ बात है वो सही रूप से उन धर्मों को समझना चाहिए, तभी वो अनेकांत सिद्ध। ये स्याद वाद तो कथन पद्धति है, किसको बताती है? अनेक अंत यानी अनेक धर्मों को बताने वाली, परस्पर विरुद्ध लगने वाले ऐसे जो धर्म है भाषित हो रहे, क्या अस्थि और भी नास्ति भी है एक ही समय, वस्तु या तो है कहो या तो नहीं है कहो, आप है भी कहते और नहीं है भी कह रहे हो, आप हो क्या नहीं हो, तो कहेंगे हम अपने अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा हम नहीं है, टेबल की अपेक्षा हम नहीं है, तो मैं अपनी अपेक्षा अस्थि हूँ, परद्रव्य की अपेक्षा नास्ति रूप, मैं ही नास्ति रूप, परद्रव्य की मेरे में नास्ति हो तो बराबर है, पर हम अपने पर सब धर्म लगा रहे कि अस्थि नाम का धर्म मेरे में है, नास्ति नाम का धर्म भी मेरे में है। इस तरह से वस्तु का सही स्वरूप बताने वाली जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, एकांतवादी से वो नहीं जीत, यानी एकांतवादी को रूल आउट कर सकते हैं, उसके द्वारा इनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे शुद्ध देवता को पूजना चाहिए। तो हम भी बचपन में पूजा करते हैं, कर देते हैं, मंदिरों में प्रथा ही थी ना, शाम की आरती होती थी, सुबह में भी एक सरस्वती की पूजन तो बोली जाती थी और शाम को भी उनकी आरती गाते थे, पूरा शास्त्र का कपाट ऐसा बड़े के बड़े मंदिरों में होते थे, उसके सामने हम आरती उतारते थे, तो हमने पूजा की कि नहीं की, उसको कभी खोलकर पढ़ा नहीं, उसकी कथन पद्धति को जाना नहीं, पर ये हमारे शास्त्र है, इतना तो बहुत आदर था उसके प्रति। क्योंकि हर साल पद्धति थी ना, वो तो उसके बराबर हिफाजत करके, हाँ इतना तो हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर उपकार किया कि भगवान की वाणी इतने 2000 साल तक हमारे लिए सुरक्षित रखी, उसका कोर जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम तक आ गया आज तक, परंतु उसको पढ़ेंगे तो ये हर एक जीव के कल्याण की बात, देखो विशेषात पढ़ेंगे, श्रुत देवता या जिनवानी के प्रसाद, ये प्रमाद हुआ है, प्रसाद करो, ऊपर सेकंड लाइन में वो पूजन किया था ना हमने, उसको सुधारा था और ऊपर भी पूजा किया था, दो जगह सुधारा था, ये प्रसाद करना उसको, प्रमाद और प्रसाद में अंतर है मालूम है कि नहीं, प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद यानी कि कोई सोता रहता है उसको ये कितना प्रमाद, या आलसू है ऐसा कहते, ये तो लौकिक अर्थ है, उसको प्रमाद कहते हैं, और यह है प्रसाद, तो जिनवानी के प्रसाद से ही हमें यह ज्ञात होता है कि पूजने योग्य कौन है और क्यों है, क्यों है वो भी जिनवानी ने बताया, हम तो उनके गुणों का वर्णन सिद्धों की वो उन्होंने तो बताया हमें, तथा उनकी पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, इसलिए जिनवानी भी पूज्य है, अगर शास्त्र न होते तो हम देव के स्वरूप को भी नहीं जान सकते थे। फिर जिनवानी स्यादवाद नए गर्भित है, क्या क्या कहा, स्याद अभी हमने देखा था, वाद यानी कथन, तो का द हो जाता है, अभी वो तो व्याकरण के नियमों में नहीं जाएंगे, स्याद तो और आगे वाद, तो स्याद वाद हुआ, स्याद वाद शब्द बरोबर, आपने स्यादवाद तो सुना था पर स्यात शब्द मालूम नहीं था, क्योंकि संस्कृत की संधि कैसे तोड़कर पड़ी जाती है वो व्याकरण, थोड़ा सा व्याकरण हो तो पता चल जाता, तो ये स्यात शब्द से वो स्याद हुआ उसका, जैसे हम कहेंगे ना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन क है वो, तो उसका सॉफ्ट हो जाता है, ग हो जाता है, पर हमेशा नहीं होता, आगे प आया सम्यक प्रकृति में, सम्यक ग प्रकृति नहीं होता, सम्यक प्रकृति क का क रहता है, सम्यक दर्शन में क का ग हो जाता है, पर ग और द सम्यक दर्शन है शाम के, ये ऐसे कुछ नहीं आता है। तो जिनवानी स्याद वाद नए गर्भित है, ये स्याद यानी किसी अपेक्षा, ये क्या हुआ, नए हुआ ना, नयों का कथन हुआ, इसलिए नए शब्द आगे लगा। स्यादवाद कथन की वह शैली है जिसे अनेकांतात्मक वस्तु का कथन करते हुए, क्या कहते हैं स्यादवाद, क्या है कथन की शैली है, कैसी, किसी अपेक्षा वस्तु ऐसी है, किसी अपेक्षा ऐसी है, बताने वाली शैली है, ये तो पद्धति है। क्या करते हैं उसे अनेकांतात्मक, एक नहीं वो अनेक, अनेक तो समझते ना, और अंत यानी धर्म, अनेक धर्म स्वरूप, आत्मक यानी उस रूप, अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्म स्वरूप वस्तु का कथन करते, वस्तु कैसी है तो अनेक धर्म स्वरूप ही है, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। देखो ये धर्म शब्द आता है, कहीं गुण शब्द आता है, कहीं शक्ति शब्द आता है, जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, ये क्या है, गुण है, गुणों की पर्याय होती है, परंतु ये कैसे धर्म लिए, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, तत् अतत्, अभी बहुत सारे हैं, इनमें पर्याय नहीं होती है, ये धर्म कहलाते हैं, और वो भाषित होते जैसे परस्पर विरोधी है, परंतु किसी अपेक्षा वो लगा के वो बराबर उसका कथन किया जाता है। तो कहते वस्तु जो अनेकांत स्वरूप है उसका कथन करते हुए किसी भी प्रकार का विसंवाद पैदा नहीं होता, यानी कोई कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा नहीं होती, विसंवाद यानी कहीं कथन ऐसा किया और उसके उल्टा दूसरे पद्धति से किया, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अभी अन्य मति जो सर्वथा नित्य मानने वाले हैं, सर्वथा अनित्य मानने वाले, सर्वथा अनित्य मानने वाले क्या कहते, किसी ने कोई अपराध किया, अपराध करने वाला तो अन्य ही द्रव्य था, अब उसको कुछ सजा हो गई, दंड हो गया, तो दंड भुगतने वाला कोई अन्य ही, क्या अनित्य मानने वाला एक पूरा सेंटेंस बोल सकता है, मैंने भोजन किया, ऐसा कहीं तो मैं कहते कहते वो ने लगाने के पहले वो एक क्षण में तो पलट गया वो, और फिर उसका ज्ञान भी गया उसके साथ, तो ये तो हम जो पूरा वाक्य बोलते हैं तो पहले का इम्प्रेशन उसका अर्थ हमारे ख्याल में है, तब तो पूरे वाक्य का हमें सेंटेंस का पता चलता है, उसका मीनिंग ख्याल में आता है, नहीं तो वाक्य पूरे होते होते पहले क्या बोला था, क्या बोला था, याद ही नहीं रहेगा, तो वो पूरे वाक्य का ख्याल कैसे आएगा। तो ये उनका स्ववचन बाधित है, उनका जो कथन है, मान्यता है, वो बिल्कुल गलत है। वो तो एकांतवादियों को, तो जैनियों ने तो पहले के जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े ऐसे जिसको कहेंगे कि उनके वाद होते थे, हाँ डिबेट जो कहते हैं, राजा उनके सामने या ऐसे कुछ पब्लिक में, और फिर वो अपना मत प्रदर्शित करे, फिर उसका खंडन करते थे, तो जैनी हमेशा जीत जाते। ये अभी अभी तक ये पद्धति चली थी, गोपाल दास जी बरैया थे तब तक,
ये
जैन धर्म अंगीकार करते थे, कितने विद्वानों ने इसी तरह से जैन धर्म अंगीकार किया, अन्य मतियों के विद्वानों ने भी, ये आर्य समाज के कितने जैनी हुए थे तब, उस जमाने में बहुत सारे ऐसे वाद विवाद, विवाद नहीं कहेंगे उसको, वाद कहते हैं उसको, यानी चर्चा जो होती है, अपना अपना मत मानते हैं और फिर उसको जो सही है उसको फिर डिक्लेयर किया जाता है कि ये सही है,
डिस्कशन करते
हैं, हाँ, और पब्लिक में। वो तो लिखित रूप से जो कुछ वो अलग बात थी, वैसे फिर वो हुए थे, वो तो जैनी जैनियों में ही हुआ था, यहाँ तो अन्य मतियों के साथ होता था, ये आर्य समाज वाले, हिंदू वाले, बौद्ध, इस तरह से। हाँ, खानिया तत्व चर्चा तो जैनियों में भी जो कुछ अलग अलग मत है, निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता वगैरह मानने वालों में, उनमें ये हो गया, वो तो लिखित रूप से चर्चा चलती है, उसमें नीचे तो सिग्नेचर लेते थे कि हमने ऐसा होता है। तो यहाँ क्या कहते, देखो कि विसंवाद पैदा नहीं होता है, वस्तु नित्य भी और अनित्य भी है, भी लगाया। नित्य ही अगर अपेक्षा कहेंगे तो ही लगा सकते, समझ में आई बात? और ऐसा कहेंगे स्यात नित्य है स्यात अनित्य, स्यात में ही वो अपेक्षा गर्भित हो गई उसकी, या क्या कहेंगे आप, अपेक्षा बताकर कहेंगे। और केवल ऐसा ही कहना तो नित्य भी है और अनित्य भी है, यानी दोनों है, यानी प्रमाण रूप वस्तु कैसी है, नित्य भी है अनित्य भी है, तो कैसे हो सकता है, तो फिर हम अपेक्षा बताएंगे। द्रव्य रूप से नित्य भी अपेक्षा बताते, और पर्याय रूप से अनित्य कौन, वस्तु स्वयं, वस्तु में ही दो अंश बताए, वस्तु यानी द्रव्य, इसके विपरीत यानी इसका उल्टा एकांतवादी दर्शन, दर्शन यानी फिलोसॉफी, एकांतवादी यानी जो कोई सर्वथा नित्य मानने वाले है, कोई सर्वथा अनित्य मानने वाले, अलग अलग जो है, एकांतवादी दर्शन किसी को नित्य और किसी को अनित्य मानते हैं, जैसे उनके मत से आकाश नित्य ही है और दीप अनित्य ही है, किंतु जैन दृष्टि से आकाश और दीप दोनों ही नित्य भी है और अनित्य भी है। अतः स्यादवादी जैन दर्शन, जैन दर्शन कैसा है, तो स्यादवादी है, स्यादवाद से कथन करने वाला है, एकांतवादी दर्शनों के द्वारा अजेय है, यानी वे इनको जीत नहीं सकते। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कहता है कौन, जैन दर्शन, उसकी उपलब्धि भी हमें जिनवानी या शुत देवता के प्रसाद से ही हुई है, क्योंकि इस काल में ना कोई तीर्थंकर है, अन्य अरिहंत तो भी नहीं है, और अभी आचार्य उपाध्याय साधु तो है परंतु वो कितने रेयर कहीं कहीं है, और उनको कहाँ फुर्सत हो, अपने आत्मा की बात करेंगे, सोचेंगे, लीन हो गए, ध्यान करेंगे, कि आपको बेसिक से पहले पूरे एक एक जन आया तो उसको समझाते बैठेंगे, हमारे जैसे यहाँ नए नए लोग आते रहते तो वो तो चर्चा करेंगे, कोई उनके परिणाम हो तो, क्योंकि उन्हें तो अभी परमात्मा प्रकाश में चल रहा है ना अपना, ये जो शुभ विकल्प छठे में आते वो भी छोड़कर अंतरंग में स्थिरता की उन्हें जैसे अंदर से चटपटाहट होती है उनकी, इसलिए जिन देवता जो श्रुत देवता है उसको भी पूजना हमारा कर्तव्य है। आगे कहते कि जो श्रुत देवता की पूजा करते हैं वे परमार्थ से जिन देव की ही पूजा करते, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी है और उनकी पूजा जिनेन्द्र भगवान की पूजा है। पूजा ने केवल कोई रिचुअल नहीं समझना, कोई शरीर की या हाथ की या वाणी की क्रिया नहीं समझना, हम पूजा तभी करेंगे जैसे हम नहीं गुणों के अनुराग में, जो हम गुणों में अनुराग होता है, अब इनके गुण क्या है तो इसमें जो लिखा है उसको समझेंगे हम, तत्वों का अभ्यास करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे तो हमने इसकी पूजा की, ऐसा कहेंगे।
देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कि जो शुक्र देवता की पूजा करते हैं वे परमार्थ से यानी सही रूप से यथार्थतया जिन देव की ही पूजा करते हैं, क्योंकि यह जो श्रुत है आगम है वह जिनेन्द्र भगवान की ओंकार ध्वनि से ही आगे चलकर बनाए, यानी वो वाणी जिनेन्द्र भगवान की कही जाती है, तो शुद्ध की पूजा करें, यानी कई लोग कहते हैं ना बाबा हम क्या करें, हमारे पास मंदिर बहुत दूर है, पास में नहीं है, तो हम क्या करें, पूजन करते हैं तो सामने साथ चल रहे पूजन करो, वह पूजने पूजनी है, ये बात कहीं हम प्रूफ मिल रहा है, यानी जैन दर्शन के अनुसार देव शास्त्र और गुरु तीनों ही पूजनी है, यानी अष्टद्रव्य से पूजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्वाणी जितनी गई है और गुरुओं के द्वारा गुरुओं के द्वारा
अभी हम श्लोक पढ़ेंगे 44 नंबर का ऊपर। ये यजन्ते श्रुतं भक्त्या ते यजन्ते यजसाजिनं न किञ्चिदन्तरं प्राहुः राप्ता हि श्रुतदेवयोः। श्रुत और देव इन दोनों में न किंचित अंतरम, कोई भी अंतर नहीं, ऐसा प्राहु इन्हें बताया, किसने, आपता यानी अरिहंत भगवान ने ऐसा बताया, यानी भगवान ने ऐसा बताया है कि श्रुत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। देखो हम नीचे उसका अर्थ देखते हैं। जो भक्ति पूर्वक श्रुत को पूजते हैं वे परमार्थ से जिन देव को ही पूजते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने श्रुत और देव में, ये देव है भगवान, देवगति के भी देव होते हैं, उनकी बात यहाँ नहीं है, तो श्रुत में और देव में थोड़ा सा भी भेद नहीं कहा है, क्योंकि भगवान की भी पूजा क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं, तो उनके द्वारा हमें ये मार्ग पता चला। वे ही प्रथम सबसे फर्स्ट इसको कहेंगे, उपदेशक तो वे ही है। विशेषण जिन देव के मुख से निकली, ये कहेंगे मुख से निकली, ये तो कथन पद्धति है, परंतु उनके सर्वांग से खिलती है। एक तो निरक्षरी होती है, हम जैसे ये हमारी हम बोलते हैं तो उसमें अक्षरात्मक भाषा है ना, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब उनकी कैसी है, निरक्षरी वाणी। ओम तो हमने अक्षर बनाए, उसको एक सिंबल बनाया हमने, ओम कैसा लिखना, परंतु उनके तो बस ओम ऐसे भी नहीं, जैसे मेघ गर्जना होती है तो हम उसमें कुछ नाम रखे, उसका कोई आवाज विशिष्ट करके उसको हम लिखेंगे, ऐसे ओम हमने वो उसको एक सिंबल बनाकर लिख दिया, पर कहते उनके तो ऐसी ही निरक्षरी ध्वनि है, अक्षर रहित है, परंतु दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं, जब खीरी तो सर्वांग से खीरी है, निरक्षरी है, इच्छा के बिना खीरी है। उनके कोई इच्छा नहीं है कि मैं इनको इतना सुनाऊं, क्यों नहीं इच्छा, पूर्ण वितरा हुए है बारहवें में, फिर तेरहवें में जाके वो सर्वज्ञ भगवान हुए, तब जाके तीर्थंकर वो प्रकृति का उदय शुरू हुआ, फिर समोशरण हुआ, दिव्य ध्वनि खीरी, तो कहते उनके तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है, परंतु ऐसी दिव्य दिव्य ने ऐसी चमत्कारिक ऐसी अलौकिक बात है कि खिरती है तो निरक्षरी है, अब वो श्रोताओं के कानों तक पहुंचती है, क्योंकि वहां के पुद्गल स्कंद उस रूप होते होते, तो ये क्या उनके अपनी अपनी भाषा में ट्रांसफर हो जाता है। आजकल के तो विज्ञान के युग में तो ये कुछ बहुत अचरज की बात नहीं है, हम यहाँ टेलीफोन में बोलते हैं, आपने फोन किया था ना, हम आने वाले आज, तो क्या वायर में से शब्द आएगा इधर, क्या क्या हुआ, हाँ वाइब्रेशन, परंतु वो वाइब्रेशन था वो फिर यहाँ शब्द रूप हो गया और फिर हमको सुनाई दिया, तो वहां तो ये ऑटोमेटिक वहां होता है कि श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है, इसलिए उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। ये तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, तीरियन जब ये सुनते हैं समझते हैं, उनको अपनी अपनी जो कुछ उनकी भाषा में वे भी समझते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों के समोशरण में तो पूरे सभी लोग आते हुए ना, सभी प्रांतों के, उस जमाने में मराठी कन्नड नहीं होगा, परंतु कोई मागधी होगा, कोई जो अन्य कुछ जो कोई उस जमाने की भाषाएं होगी, तो वो तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी भाषा, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो कहते जिन देव के मुख से निकली और गणधर के द्वारा स्मृति में रखकर, ये गणधर कौन होते हैं, जो गणधर वो शास्त्र लिखते हैं, बराबर है ना, हाँ भावलिंगी मुनिराज, और क्या विशेषता उनकी, चार ज्ञान के दायरे, यानी इतना सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वाले जीव है, तो भगवान की वाणी में से मैक्सिमम जो निकाल सकते हैं पूरा का पूरा तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऐसा कथन है, भगवान का ज्ञान इतना अनंत जानता है, केवल ज्ञान में इतनी बातें अनंत, तो उसका अनंत भाग उनकी वाणी में आता है, ओंकार ध्वनि में, जो ओंकार ध्वनि में जितनी बातें ऐसी, उसका अनंत भाग गणधर भी कैश कर पाते हैं, गणधर के ज्ञान में आता है, गणधर के ज्ञान में जितना आता है वो पूरा का पूरा उसकी रचना नहीं होती, वो तो लिखते नहीं है, वो तो अंतर्मूर्त में उसकी रचना कर देते बारह अंगों, तो फिर भी बारह अंगों का अभी कुछ नहीं अंश, किसी एक अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंश बाकी है, जो अभी हमारे ये सिद्धांत ग्रंथ आदि में है, जो कोई नहीं पढ़ता आजकल, वो भी बहुत टफ लगता है ना, तो वो कितना होगा ये ज्ञान, तो कहते गणधर के द्वारा स्मृति में रखकर, ये गणधर एक से अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे हैं वहां पर, एक से अधिक गणधर भी वहां होते हैं। तो गणधर के द्वारा स्मृति में रखकर 12 अंगों में रची गई जिनवाणी को ही श्रुत कहते हैं, ये द्वादशांग कहते हैं, द्वादश ने 12। सभी रचेंगे तो सेम ही होगा आपका प्रश्न है, समझे 11-12 कुछ तो अपने अपने ज्ञान में वो तो उसकी रचना होगी, उसका उपदेश भी देंगे ना, उनके ज्ञान में रखने से क्या होगा, वो उसका उपदेश देंगे, अन्य आचार्य उसको ग्रहण करेंगे, वो फिर अपनी, ये तो कितने ही सालों तक तो मौखिक ही चल रहा था, उन्होंने सीखा, उनको बिल्कुल बुद्धि ऐसी थी कि याद हो गया, एक बार सुनते थे याद हो जाता है पूरा पूरा, एक पाठी कहते थे। तो फिर कालांतर से ऐसी बात आपको तो मालूम है, वो दर्शन आचार्य का ऐसा विकल्प हुआ कि अभी इतना कम ज्ञान अभी इस काल में रह गया है, मैं जानता हूँ उतना भी आगे नहीं रहने वाला, फिर उन्होंने वो पुष्पदंत और भूतबली को वो बुलाकर उनको पढ़ाया वो सब, और उन्होंने लिखित रूप से पहली बार वो षटखंडागम लिख के रखा। बाद में तो बहुत सारे आचार्यों ने अन्य अन्य भी ग्रंथों की रचना की है। तो कहते हैं कि जिनदेव के मुख से निकली और गणधर के द्वारा स्मृति में रखकर 12 अंगों में रची गई जिनवाणी को ही श्रुत कहते हैं। श्रुत का शब्दार्थ होता है सुना हुआ, शब्दार्थ है उसका मीनिंग क्या है, तो सुना हुआ हम कहते हैं जानना, तो ज्ञात हुआ, ज्ञात कैसे शब्द हुआ, वैसे श्रुत यानी सुना हुआ, गणधर ने भगवान के मुख से जो सुना वही श्रुत है। अतः जिनदेव और उनकी वाणी में जो परंपरा से आचार्यों द्वारा शास्त्रों में निबद्ध है, निबद्ध यानी शास्त्र रूप से रची गई है, ये परंपरा से, मूल परंपरा सर्वज्ञ से चली आई है, यदि कोई परंपरा को छोड़कर नहीं मैं ऐसा सोचता हूं मानकर अपनी बुद्धि कल्पना से कोई रचना करता है, ये रागी देव द्वेषी कितनी ऐसी रचनाएं हो गई है बीच में, तो कहते हैं वो तो वो आगम नहीं है, उसमें वस्तु का सही स्वरूप नहीं बताया जाता, क्योंकि कोई छद्म से ऐसा नहीं कहता कि मैं ये पूरा पूरा जान रहा हूं, मैंने अपनी बुद्धि से ये सब रचा है, ऐसे अन्य मतियों के ग्रंथ जो उनके ऋषियों ने आदि रचे गए, वो तो ना ही सर्वज्ञ थे ना ही समय दृष्टि थे, अपनी बुद्धि से उन्होंने ये बातें रची गई, इसमें उसमें तो बहुत सारे दोष भी पाए जाते हैं। कोई अंतर कैसे हो सकता है, व्यक्ति अपने वचनों के कारण ही पूज्य बनता है। हम देखते हैं लौकिक में भी कोई व्यक्ति ऐसे झूठ बोलने की आदत है उसको, या ऐसे कुछ लपेटबाजी, तो उसका विश्वास कौन करेगा। तो व्यक्ति अपने वचनों के कारण ही पूज्य बनता है, व्यक्ति के वचन व्यक्ति से भिन्न नहीं होते, समझ गए आगे बढ़। इस प्रकार संक्षेप से देव पूजा की विधि को कहकर आगे साक्षात उपकारी होने से गुरुओं की भी नित्य उपासना करने का उपदेश देते हैं। साक्षात उपकारी क्यों, उनके मुख से हमने सुना, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत होते हैं परंतु पढ़कर हमें उसमें से सही अर्थ नहीं निकाल सकते, क्यों, शब्द तो है लिमिटेड संख्या और अर्थ तो भाव तो है अनंत, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और उसमें से कोई कौन सा अर्थ लेना है, पढ़ेंगे तो सही, अपने अपने मन में तो कुछ ना कुछ कल्पनाएं तो पड़ी होती है, मिथ्या दृष्टि जी पढ़ने बैठे तो उसके अपनी बुद्धि अपनी मति कल्पना तो कुछ चल रही थी, और सामने भी ऐसा ही कुछ कथन आता है जो निमित्त के द्वारा भी हो सकता है, तो उसका वो गलत अर्थ कर सकता है, या किसी शब्द का अर्थ कुछ अर्थ अलग है और वो उसको मान लेता है कुछ अलग, जैसे यही शब्द शास्त्र में भी आते हैं वही शब्द लौकिक में भी आते हैं, दोनों का अर्थ भी भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे आपके कंप्यूटर में माउस का अर्थ क्या होता है, विंडो का अर्थ क्या होता है, और लौकिक में हमारे क्या अर्थ है, अलग अलग उसका होता है, ऐसा ही यहाँ पर। आपको सुनना एक स्टोरी, मैं प्रैक्टिस करती थी तब की बात है, तीन लड़कियां आई कॉलेज गई या कोई एसएस के वगैरह थी, हा? तो आई और मुझे पूछा آپ ہیئر اسپیشلسٹ ہو نا؟ انہوں نے بولا نہیں تو باہر بورڈ کیوں لگایا؟ کیا بورڈ پر پڑھ کے اندر آئی تھی؟ تو میں نے بولا چلو ہم کو دکھاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں گے کیا بورڈ لگایا. تو بورڈ لگایا تھا بال روگ تج، اور اس کے ساتھ انگریزی میں بھی تو لکھا تھا نا چائے اسپیشلسٹ کر کے. تو بال کا ارتھ کیا نکالا؟ ہیئر. تو جیسے یہ بال شبد کے دو ارتھ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہیئر ہوتا ہے اور ایک بال یعنی بالک ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو وہ ٹریٹمنٹ چاہیے تھے، انہوں نے ان کے من میں وہی تھا، تو ان کو وہ شبد کا ارتھ بھی وہی بھاسیت ہوا. ایسے تو شاستر کے شبدوں کو بھی وپریت اس کا ارتھ لینے والے بھی بہت ہیں. اس لیے سننے کی مکھیتا پہلے میں پہلی رکھی ہے. دولت رام جی نے بھی چھڑالا میں لکھا ہے کیا؟ سن سمجھ اور چیت سیانے کال ورتھام تکووے. کیوں؟ یہ نر بھو پھر ملن کٹھن ہے جو سمیک نہیں ہووے. یعنی سن اور سمجھنے کی بات، یہ سننے کی مکھیتا ہوتی ہے پرائمری، یعنی شروعات میں جس کو ہم دیشنا کہتے ہیں، سننے کی مکھیتا بہت مہتو کی ہے.
ہو سکتا
دول سمجھ، ابھی سامنے کے سیاح کر کے اس کو بولنا پڑے گا، اس کو مورکھ کہیں گے تو سننے کو تیار نہیں ہوگا. اور جو اترا بھی سننے کو تیار وہ سیاح نہیں کہیں گے ہم اس کو. کہتے ساکشات اپکاری، یہ ساکشات یعنی پرتیکش ہے نا، کیونکہ بھگوان تو ہو چکے، ابھی تو ہے نہیں ہے. شاستر ہے پرنتو اس کا ارتھ بتانے والے، کھول کر بتانے والے تو گرو ہے، جنہوں نے انوبھو کر کے اس کو بتایا. ان گروؤں کی بات ہے یہاں پر، ان کی بھی نتیہ اپاسنا کرنے کا اپدیش دیتے ہیں. یہ 45 نمبر اوپر پڑھیں گے. اپاسیا گرو نتم اپرمت شیوارتی بھی تتپکشتارکش پکشانتشچرا وگنو رگوترا. پرم کلیان کے اچھک پاکشک شراوکوں کو پرماد چھوڑ کر نتم اپرمت ہی اوپر لکھا ہے. اپرمت نے اپرمت گنستان کی بات نہیں ہے، پرماد چھوڑ کر یعنی آلس چھوڑ کر، ایسا اس کا ارتھ ہے. گروؤں کی دھرم کی آرادھنا میں لگانے والوں کی، گروؤں کا ارتھ کیا کیا؟ دھرم کی آرادھنا میں لگانے والوں کی نتیہ اپاسنا کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے گروڑ کے پنکھ پاس رہنے سے سرپ دور رہتے ہیں، ویسے ہی گروؤں کے ادھین ہو کر چلنے والوں کے دھارمک کاریہ سے وگھن دور رہتے ہیں، अर्थात उनके कार्यों में विघ्न नहीं आते. मुख्य तो हमें उनसे उपदेश प्राप्त होता है, उनकी उपासना करने का अर्थ ही ये होता है. गुरु का सेवन करने का अर्थ है गुरुओं के द्वारा उपदेश की प्राप्ति, फिर उनके आहार दान वगैरह जो कुछ श्रावक के कर्तव्य तो उसके साथ आ ही जाते, उसी को उनको नित्य उपासना करके बताएंगे. आगे लिखते देखो, गुरु की उपासना की विधि कहते हैं 46. निर्व्याजया मनोवृत्या सानुवृत्या गुरोर्मन प्रविश्य राजवच्छत्व विनये नानुरंजये. अपना कल्याण चाहने वाले को छल रहित और अनुकूलता सहित मनोवृत्ति के द्वारा गुरु के मन में प्रवेश करके राजा की तरह विनय से गुरु को सदा अपने में अनुरक्त करना चाहिए, यानी गुरु की विनय होनी चाहिए. जिनके द्वारा हमें ये अलौकिक मार्ग मिलता है उनके प्रति ये तो अहोभाव तो होना ही चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए. जैसे सेवक वर्ग अपने निश्चल ने कपट व्यवहार, हाँ कपट रहित व्यवहार और विनय पूर्वक आज्ञा पालन से राजा के मन में प्रवेश करके उसे अपना अनुरागी बना लेता है, यानी राजा की अच्छी तरह से सेवा करके उसको खुश करता है, है ना। उसी तरह अभी गुरु को खुश तो नहीं करना, जो इसे राजा को ये लौकिक बातें वैसी तो कुछ नहीं है, तो ये सहज रूप से उनकी विनय ऐसी होनी चाहिए। गुरु के आने पर खड़े होना आदि कायिक विनय, शरीर के द्वारा, कायिक यानी शरीर के द्वारा, हितमित भाषण आदि वाचनिक विनय, और गुरु के प्रति शुभ चिंतन आदि मानसिक विनय से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। गुरु की आज्ञा का पालन ऐसे नहीं अभी हम कहाँ जाना है, हमको जाए कि नहीं जाए, हमारे बच्चे की शादी करने करे कि नहीं करे, वो उसको आज्ञा नहीं करना है। गुरु की आज्ञा होती है शास्त्र का जो उन्होंने उपदेश दिया है उसका अंगीकार करना, वही उनकी आज्ञा है। करते हुए गुरु के मन में अपना स्थान बनाना चाहिए। देखो यहाँ लिखा ना, गुरु के आने पर खड़े होना आधिकारिक विनय से, क्यों आशा बे कुकमा में आपने बुलाया था हमको दो बार, वहाँ कैसी पद्धति है? जब हॉल में प्रवेश करते हैं प्रवचनकार, उसके 10 मिनट पहले तो बेल बजती ना, सभी आकर श्रोताजन अपना आसन ग्रहण करते हैं, बेल पहले बजती है, सभी इकट्ठे होते हैं, यानी जो समय है प्रवचन का उसके 10 मिनट पहले सभी आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जब प्रवचनकार आते तो सभी उठ खड़े होते हैं हाथ जोड़कर, और जब तक वो अपना आसन नहीं ग्रहण करते वो खुद खड़े रहते हैं। वहाँ ऐसी होती तो मैं तो बोर्ड बोर्ड लिखने की आदत थी, पहली बार मैं लिखने गई तो सब खड़े, तो मेरे ख्याल में आया कुछ गड़बड़ी है, तो फिर मैं बैठ गई सबको के फिर जाके उठकर मैंने लिखने का कार्य किया। जाते समय भी कोई एक शब्द मुंह से नहीं बोलता है। जब प्रवचनकार निकल कर बाहर चला जाता है हॉल के बाहर, सब उठ के खड़े रहते हैं और उसके बाद सब अपना यानी जगह भी छोड़ते हैं और बोलना चालू करते हैं। इतनी अभी भी इस काल में भी वहाँ इतनी विनय करते हैं, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। जबरदस्ती नहीं, नहीं वहाँ की पद्धति, और ऐसे कोई ऐसे रास्ते में चलते चलते चर्चा कर रहे हैं प्रश्न पूछ रहे ऐसा कुछ नहीं है। समय मांग कर आएंगे, वो भी वहाँ के जो कोई व्यवस्थापक उनको अलाउ करेंगे तो आकर चर्चा करेंगे। चलो अभी अपना समय हो गया है, यही रुकेंगे।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सना देत हूँ।